نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 114 آیت نمبر 31 سے 52 سورة یونس. لیسن نمبر 114 آیت نمبر 31-52 سورة یونس. آج کے سبق کا بنیادی تھیم ہے ہدایت اور حق کا تعلق. بہت اہم آیت ہے جس میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ابھی جب آیت پہ ہم پہنچیں گے کہ تکرار ہے لفظ ہدایت اور حق کی. ہم وہاں جا کے دیکھیں گے کہ آج کے دور میں ہدایت ہے تو حق نہیں, حق ہے تو ایسے لوگوں کے پاس ہدایت نہیں. کیا حالات ہوتے ہیں کہ انسان ہدایت کو پاتے پاتے حق سے دور ہوتا ہے. پہلا ٹاپک جو آج کے ہمارے سبق میں ہے وہ نعمتوں کا احساس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو سننے بولنے اور لکھنے کی اور باقی صلاحیتیں دی اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں. دوسری ایک اور بات کا جواب آج ہمیں ملے گا اور وہ کیا ہے کہ جب انسان ہدایت کا راستہ چھوڑتا ہے یا اس سے چھٹ جاتا ہے تو پھر اس کا نصیب کیا ہے. فما زباد الحق الا الدلال, شروع میں یہ آیت آ جائے گی ہمارے سامنے. پھر ایک اور چیز جو آج کے سبق میں ہے وہ ہے اس کتاب جیسی کوئی چیز بنا کے لا سکو تو لے آؤ, تم نہیں بنا سکو گے تو بہتر ہے کہ اسی کو مان جاؤ. اور اس کے بعد پھر قیامت کے دن کی کچھ جھلکیاں ہیں. وہ لوگ جنہوں نے زندگی کو فن اینڈ فرولک بنایا ہوا تھا اس دن ان کو لگے گا کہ ایک گھڑی بھر یا وقت کا ایک گھڑی کا بھی ہلکا سا حصہ ہم اس دنیا میں رہے تھے. آئیے آیات کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں. بات سوال سے ہی شروع ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ یونس میں تھاٹ پروکنگ سٹائل ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوال کر کے شعور کو بیدار کرنے والا انداز ہے. اور یہ انداز کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ سوئے ہوئے بھی جاگ جاتے ہیں. کسی کو آپ 10 باتیں کہتے ہیں کوئی سویا ہوئے اور آپ اس کو جا کے کہیں یہ کر لینا وہ کر لینا یہ کر لینا, ہاں ہوں ہاں کرتا رہے گا, آپ کو نہیں پتہ چلتا اس نے سنا ہے. اور آپ کہتے ہیں بتاؤ میں نے کیا کہا ہے, پھر سمجھ آتی ہے کہ ہوش میں تھا کہ نہیں. پھر وہ پوچھے گا کیا کہا میں نے نہیں سنا. تو سوال کے ساتھ بات جب انسان کرتا ہے تو اس سے بات کی وضاحت ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن وہ ہمیں انداز سکھاتا ہے کہ کسی سے بھی کوئی بات کرنے کی نوبت آئے تو پہلے اس کو جھنجھوڑ لو, اس کے شعور کو بیدار کرو, اور جب وہ سننے کے لیے تیار ہو تو پھر پوچھو. آیت 31, قل من یرزقکم من السماء والارض, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے. کن سے پوچھئے؟ لکھیے اپنے پاس آپ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا مس یوز کرتے ہیں. کیا پوچھئے؟ من یرزقکم من السماء والارض, کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان اور زمین سے؟ یہ پہلا سوال ہے. کوسچن نمبر 1, کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ دوسرا سوال, ام من یملک السمع والابصار, یا کون ہے جس کے قبضے قدرت میں ہیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں؟ تیسرا سوال نمبر 3 لکھیے, جیسے کبھی آپ بڑا کیو ڈال کے پھر اس کے اندر 1, 2, 3 لکھتے ہیں نا نوٹس میں, اسی سٹائل میں نوٹس لے. تھرڈ کوسچن, وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور کون ہے جو مردہ سے نکالتا ہے اور کون ہے جو نکالتا ہے مردے کو زندہ سے؟ یہ کتنے سوال ہو گئے؟ پانچواں سوال, وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرُ, اور کون ہے جو تدبیر کرتا ہے کاموں کی, یعنی تمہاری مینجمنٹ کون کرتا ہے, کس کی ایڈمنسٹریشن تمہاری زندگی پہ لگتی ہے؟ یہ 5 سوال پوچھو, جواب ایک لفظ میں دیں گے, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. فَسَيَقُولُونَ تو سمپل ہے, پس وہ کہیں گے, یہ تو کہنے والے ہیں نا, जिनसे सवालात पूछे गए वो हैं। जवाब क्या है? अल्लाह, अल्लाह, ये सब काम अल्लाह करता है। तो फिर इनसे पूछो फकुल, तो फिर आप फरमाइए किस बात पे? इनके इस जवाब पे, अफला तत्तकून, क्या तुम्हें डर नहीं फिर लगता उस रब से? आगे वैसे तो 34 आज तक एक टॉपिक जाएगा, लेकिन यहाँ रोक के थोड़ी सी बात कर देती हूँ। हम बड़ी रौनक से कहते हैं मुशरिकीन मक्का, वो काफिर थे, वो बुत पूजते थे और वो अल्लाह के नबी के दुश्मन थे। लेकिन याद रखिए, मुशरिकीन मक्का अल्लाह सुबहाना ताला को खालिक समझते थे, रज़िक समझते थे, आंखों कानों का मुख्तार समझते थे, अल-हई समझते थे, अल-ममीत समझते थे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं समझते थे, और वो क्या कि अल्लाह को मालिक नहीं समझते थे, मुदब्बिर नहीं समझते थे। तमाम सिफात को मानते थे, कोई शक नहीं था कि अल्लाह है, उसकी सिफात है। 99 नेम्स ऑफ एट्रीब्यूट में से 90% सिफात को वो मानते थे, वो इस हकीकत को मानते थे कि अल्लाह सुबहान ताला ना सिर्फ इस कायनात का खालिक है बल्कि इसका निज़ाम भी वही चला रहा है। लेकिन फिर क्या नहीं मानते थे? वो ये नहीं मानते थे कि वो हमारा मालिक भी है। लिखिए ज़रा आप अपने ऊपर, शिर्क तो समझिए मुझे ऐसे आता है जैसे बिल्कुल अपनी ज़िंदगी पे ले आए। मिसाल है कि आप सोच लीजिए कि ये चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सब चीज़ें यहाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे इस्तेमाल में है ना, हमें प्रोवाइड की गई है ना। कोई भी जगह ले ले, कोई मिसाल अपने जहन को समझाने के लिए समझ ले कि आप किसी घर में जाएं, घर के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद हैं आपके, हाँ ये भी है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मशीन दिलाई थी, ये फ्रिज वो लेकर आए थे, दिस सारी चीज़ें जो आपके हस्बैंड के थ्रू आपके घर में आई या किसी के भी जरिए से आई, आप उसको माने। लेकिन आपके इन सब को मानने के बावजूद मैं अपने हस्बैंड को इस घर का मालिक नहीं समझती, फितना फैलेगा कि सुकून होगा, फितना होगा ना। मालिक मानने में क्या रुकावट थी भाई, ये भी क्वेश्चन है। जब इतना कुछ जो मानते हो तो मालिक मानने में ये रुकावट है। आज हम इस जगह को इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, हमने उनसे ये चीज़ें इस्तेमाल करने की इजाज़त ली। अगर इस हॉल के मालिकों को हम मालिक नहीं मानेंगे तो फ़ायदा क्या है? किसने पूछना? इधर थब्बे डालो, इधर गंदगी डालो, हीट खोल दो, एसी खोल दो, कल कोई पूछे भी सुनाओ क्या कि आप कहेंगे जाएं जाएं हम नहीं आपको मालिक मानते। मालिक मानने का ला मुहाला नतीजा हिसाब है। हस्बैंड अगर आपको घर का खर्चा देते हैं तो वो कल पूछेंगे भी आपने इसका क्या किया। 15 दिन बाद आप कहते हैं पैसे कोई नहीं, वो पूछ सकते हैं किधर गया। घर का मालिक मकान है, ये क्यों इतनी लंबी चौड़ी बहसें करते हैं? घर लेने से पहले लिखत पढ़त करते हैं कि ये कुर्सी इधर है, ये मेज़ इधर है, आप ये बटन नहीं लगा सकते, ये स्विच नहीं चला सकते, क्योंकि वो मालिक है। जो मालिक होता है वो मालिक ही होता है, समझ रहे हैं ना। तो अल्लाह को मालिक मानने के बाद बंदे पर पाबंदियाँ लगती हैं। आप ज़रा इसको लिख के आज के नाम नहाद मुसलमानों की भी ज़रा तौहीद को देख लीजिए। जब एक इंसान अल्लाह को अपना मालिक समझता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में जवाबदेही का एहसास होता है। क्या आज हमारी अमूमी ज़िंदगियों को देखकर एहसास होता है? मिसाल देखिए कि अपना एक जिस्म को सोचते हैं, हमारे जिस्म के कान हैं ना, आंखें भी हैं, अल्लाह ताला ने यहाँ देखे सम वल बसर की बात भी की है कि अल्लाह ने तुम्हें ये सब कुछ दिया। अब ये जिस्म की आंखें हैं ना और जिस्म के कान हैं, ठीक है, इसी तरह हमारी रूह की आंखें और उसके कान होते हैं। चलिए मिसाल देती हूँ कि हमें भूख लगती है, मिसाल है कि ये बिस्किट खा लेते हैं, जो ही बिस्किट का एक टुकड़ा या रोटी या कोई ऐसी मादी चीज़ जिसको खाने से पेट भरता है, हम ज़ुबान पे रखेंगे ना, उसका टेस्ट आएगा, पेट में जाएगा, थोड़ी देर के बाद पेट में एक असूदगी की कैफियत आएगी, ठीक है। ये नहीं पता कि ये रोटी का टुकड़ा या ये बिस्किट हलाल से आया कि हराम से आया, इसका ज़ाहरी पेट और जिस्म को नहीं पता चलता, बात समझे। इसी तरह हम देख रहे हैं, हमारी आंखें खुली हैं, हमारे सामने कोई गंदी तस्वीर आ जाए, हमारे सामने खाना काबा का कोई मंजर आ जाए, हमारी आंखों को देखना है, उसको दिखता है। ये नहीं हो सकता है होता कि नॉर्मली कि हमारी आंखें फौरन बंद हो जाएं किसी भी नाजेबा मंजर को देखकर, ठीक है। सेम थिंग कानों में, हम कुरान अजान की आवाज़ भी सुनते हैं और कोई गीबत कर रहा होता है, कान उस वक़्त भी सुनते हैं। ये तो है हमारे जिस्म के इन अज़ा का मामला। अब लिखिए कि जिस तरह हमारे जिस्म की ये चीज़ें हैं ना, इसी तरह हमारी रूह के भी कान हैं, हमारी रूह की भी आंखें हैं, हमारी रूह का भी पेट है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जिस्म की ज़ुबान को टेस्ट का फ़र्क नहीं लगता हराम खाने या हलाल के, रूह को बर्दाश्त भी नहीं होता। इंसान की रूह जब हराम का लुकमा चखती है तो वो अंदर से बेचैन हो जाती है। हराम के लुकमे जब पेट में जाते हैं ना, तो रूह का पेट अंदर से चिलचिला उठता है, जिसको आप कहें कि कैंसर की तरह उसके अंदर एक फितूर पैदा हो जाता है। हम गलत चीज़ें सुनते हैं ना, तो हमारी रूह के कान जो है ना वो बीमार हो जाते हैं, और इसी तरह जब हम गलत चीज़ें देखते हैं ना, तो हमारी रूह की आंखें परेशान हो जाती हैं। ये जो आज के दौर में हम सब ने एक बड़ा मॉडर्न लफ्ज़ बना लिया ना, साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, और एक फिजिशियन होते हैं एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना बुनियादी तौर पे, ये हमारे इस जाहिर की टेक केयर नहीं करते। इसके लिए तो आप ENT पे जाइए, डॉक्टर साहब कान में दर्द है, कुपर्दा आ गया, पानी पड़ गया, आंखों में मोतिया आ गया। ये जो ज़ाहरी डॉक्टर होते हैं ना, ये हमारे ज़ाहरी फिजीक की आंखों की केयर करते हैं। साइकाट्रिस्ट, जो बुरा लफ्ज़ नहीं है, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, लेकिन अगर वो इकरा बिस्मी रब्बिका के साथ आपकी बात करेगा तो आप देखेंगे कि उसको तो एक सेकेंड लगेगा आपका इलाज करते हुए, लेकिन वो इंसान की अंदर की सोचें पढ़ लेते हैं, उनको उन्होंने स्टडी किया होता है ह्यूमन बिहेवियर को। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट क्या है? ह्यूमन बिहेवियर, पीपल पर्सन है, उसको लोगों के खुशी गम दुख का पता होता है। वो हमसे जो बातें कर रहे होते हैं ना, वो असल में हमारी रूह का इलाज कर रहे होते हैं, और ठीक हो जाते हैं लोग। वजह क्या है? कि लोगों के मसाइल भी मादी ही होते हैं। अल्लाह ना करे कभी आपको ऐसे लोगों के साथ वास्ता पड़े, लेकिन अगर कभी पड़ा हो तो आप मेरी बात की तस्दीक या तकजीब कर सकते हैं कि जब भी कोई डिप्रेशन में जाता है या स्ट्रेस में चला गया, और फिर अखीर घर वाले उसको किसी कंसल्टेंट के पास ले जाते हैं और वो उसको लेसन्स देते हैं, वह कितनी सिटिंग्स होती हैं, वो अमूमन क्या बातें करते हैं? जाते बोलने नहीं शुरू हो जाते, क्या कहते हैं? आप सुना है किसी का आप में से एक्सपीरियंस? जी आपका है रोहत, क्या ये बात सही है? क्या किया था उन्होंने जब आप साइकेट्रिस्ट के पास फर्स्ट मीटिंग में गई तो उन्होंने आपसे क्या कहा?
नहीं, मैंने पढ़ी है साइकेट्रिस्ट।
पढ़ी है, कोई गया किसी साइकेट्रिस्ट पर? जी आप बताइए क्या किया था उन्होंने आपके साथ?
जी सर जी, मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मेरा जो डॉक्टर था वो मेरी बीमारी फाइंड आउट नहीं कर सका था, तो मेरा इस्तेमाल लोगों से उठ गया था। कोई जो भी बात करता तो मैं कहती हूँ मुझे पता है, फिर मैं नहीं पता, जैसे होता ना मेरा इस्तेमाल हो गया था।
एग्जैक्टली, देखिए अब इनका जो प्रॉब्लम था कि इनका लोगों से ट्रस्ट टूट गया। साइकेट्रिस्ट ने जाते ही पहले इनका मर्ज पहचाना, जब पहचान लिया तो फिर क्या ये मुश्किल है किसी को एथिकली लोगों पे एतमाद दिलाना, करना पड़ेगा, देखिए इसके गुजारा नहीं होता, दिस एंड दैट। बिल्कुल आप इस चीज़ को समझिए कि अगर जो लोग साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर वो साथ कुरान पढ़ लें, और उनको सिर्फ इस दुनिया की लोगों की सेहत की नहीं आखिरत की भी फिक्र पड़ जाए, तो आप कह सकते हैं कि वही असल में रूहानी मुआलिज है। हमारे कल्चर में रूहानी मुआलिज का नाम बड़ा बदनाम है, आमिल नजूमी, बाबा जी प्रोफेसर आमिल, वो आपके ऊपर अमलियात करते हैं। हाँ हमारे यहाँ बस ये गम है कि पढ़े लिखे साइकाट्रिस्ट हैं वो तो माशाल्लाह कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ट्रीट करते हैं, और जो ऐसे रूहानी बाबों के पास लोग पहुँच जाते हैं वो जंतर मंतर, फूको, ये थूक खाओ, ये पियो, ये करो, वो करो, इस तरह की बातें लेके आते हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें यहाँ सोचने का एक नुक्ता दिया कि देखो अल्लाह ने तुम्हें आँखें भी दी हैं, तुम्हें कान भी दी हैं, तो जो देता है साथ वो एक मैनुअल भी देता है, इसके मुताबिक यूज़ करते जाओगे तो बात ठीक होगी। बस आप देखिए कि ये माइक है, हम सब के पास, मेरे सामने माइक रखा है, इसके साथ एक बुकलेट भी आई, वही इन्होंने प्लग किया होगा, जहाँ उन्होंने कहा कि तार लगाओ, कहीं इनपुट होता है कहीं आउटपुट होता है, कहीं इधर लगाना है, एक तार भी ये गलत लगा दें तो आप देखते हैं कई दफ़ा गड़बड़ी होती है ना, आवाज़ ही नहीं आती, और आएगी सिर्फ उसकी नॉब को कम ज़्यादा कर दें तो बिस-बिस की आवाज़ें आती हैं। तो एक छोटा सा माइक बनाने वाली कंपनी जब कहती है कि मैंने तुम्हें जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके मुताबिक चलाओगे तो तुम्हारी मशीन ठीक रहेगी, तो उसके अगेंस्ट करोगे तो आप कल जाके उनको कह दें। मिसाल है कि आपने मशीन खरीदी, घर आते ही आपने 420 में लगा दी, एकदम ब्लास्ट हुआ, फट गई, जल गई मशीन। आप वही समेत डब्बे के और उसकी सारी चीज़ों के उठाते हैं और कंपनी के पास पहुंचते हैं क्लेमिंग के लिए। और कुछ स्टोर्स हैं जो आपको गारंटी भी देते हैं कि जी आ जाएँ जब मर्जी वापस होगी। आप कहते हैं जी ये मशीन बनाई है तुमने, तुम्हें मशीन तो बनानी आती कोई नहीं है। क्यों नहीं आती तुम्हें मशीन बनानी, देखो घर जाते ही जल गई। तो कहते हैं अच्छा जी आपने किया क्या था, तो आप कहते हैं मैंने जाते ही इसको इसमें डाला। कहते हैं कितने में डाला था, आप कहते हैं इतने में। तो वो फौरन बुकलेट से निकाल के दिखाएगा कि देखें इस पे तो लिखा था ये 120 पे चलेगा। आप मुझे बताएं कि कसूर किसका, कंपनी का या मिस यूज़ करने वाले का। आप ग्राइंडिंग मशीन लाएँ, घर आते ही आप उसको खूब धोएं, काफरों के हाथ लगे मैं इसको मांझ लूँ, कलमा पढ़ाऊँ इसको। अब जो ही आपने उसको धो के छान टून के रखा, उसके बाद आपने प्लग इन किया, एकदम फटी जल गई। आप जाके उनको कहते हैं तुम्हें कैसी मशीन बनाई है, क्या किया। कहना मैंने घर जाते इसको खूब धोया। तो नीचे ही दिखा देगा कि इसको पानी से बचाए। तो बस यही है कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं मैं यमलिक समा वल अबसार, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी आंखें बनाने वाले ने, तुम्हारे कान बनाने वाले ने तुम्हें बताया नहीं कि क्या देखो और क्या ना देखो। अल्लाह ने हमारी आंखों पर ये जो पपोटे लगाए हैं ये इसीलिए लगाए हैं कि लोग तुम्हारे सामने गलत चीज़ पेश करेंगे, तुमने आंखें बंद कर लेनी है। आप देखिए कि ये जो हमारी उंगली होती है ना, ये पोर, इसको और आपके कान का साइज़ एक होता है, बच्चे के कान और उसकी उंगली का साइज़। और जो जो हम जिस स्पीड से हम बड़े होते हैं ना, उसी से ये कान का जो पोर है और उंगली बड़ी होती है। आज भी बाद में आप जाके इधर बिल्कुल करें, 100% वैक्यूम होगा, दोनों कानों में आपको कर लें, आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। अल्लाह ने क्यों बनाई उंगलियां, दे लिया करो। आंखों पे पपटे क्यों है कि जूं ही कोई गलत चीज़ है, यहुद्दु मिन अबसारिहिम। तो जब हम अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह के हुक्मों से इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ताला की नेमतें बढ़ जाती हैं। जैसे आपके घरों में कई ऐसी मशीनें होंगी पिछले 10 साल से आप यूज़ कर रहे हैं, होता है कि नहीं, है ना। और एक और चीज़ कहते हुए मुझे याद आ गई कि बास कंपनीज बहुत अच्छी होती हैं। आप कहते हैं इनकी मशीन लो चाहे महंगी है लेकिन ये चलती बहुत देर है, ये जापानी है, ये फुला है, कुछ ना कुछ नाम बने हुए ना कंपनियों के। अल्लाह की कंपनी पे आपका क्या एतबार है? क्या अल्लाह ने हमें जो असेंबल करके बनाया, जो हम बातें कर रहे हैं, अल्लाह ने क्या हमें कोई थर्ड क्लास पैदा किया? लक़द खलक़ नल इंसान फ़ी अहसनी तकवीन। किसी मार्केट में बिकने वाली जो एक्सीलेंट कंपनी है, 10 पाउंड का चॉपर भी मिल जाएगा और 1000 पाउंड तक भी मिलते हैं, कंपनी का फ़र्क है ना। तो अल्लाह ने हमें थर्ड क्लास नहीं बनाया, उसने सही बनाया था लेकिन हम नहीं समझ पाते। हमें युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, कौन है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है। पीछे आपने बड़ी थी आयतें सूरत आले इमरान में, जिंदा से मुर्दा की मिसालें तो बहुत सारी हमने पहले भी देखी और आज भी आप दोहराने के लिए दोहरा लें। माँ जिंदा है तो बच्चा मुर्दा पैदा हो गया, मुर्गी में से अंडे का निकलना इसी तरह अपोजिट भी है। लेकिन जो ना युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, मुर्दा से जिंदा पैदा होना ये कैसे होता है जी? जमीन से सब्जे का निकलना ठीक है, और एक ईल नाम की फिश है, समुद्री जानवर है, ईल उसको कहते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, फितरत के मुताबिक जब ये प्रेग्नेंट होती है ना और बच्चे की डिलीवरी का वक्त होता है तो माँ मर जाती है, जब माँ मरती है फिर बच्चा डिलीवर होता है। युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, मुर्दा से जिंदा। और अगर आप इसके लिटरल मानी देखें तो युखरिजुल हय्य मिनल मय्य, मुर्दा यानी काफिर फाजिर फासिक बाप के घर में नेक बच्चा पैदा। आजिर के घर में इब्राहिम किस माहौल में थे, वो इतने पर्वर्टेड माहौल में इब्राहिम जिंदा रहे। और इसी तरह युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, नूह के घर में किनान का पैदा होना, बाप नबी है तो बेटा काफिर। आगे सूरत कूत में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आने वाली ये सूरत। तो पता क्या चला कि नेकों के घर बद और बदों के घर नेक। हर चीज़ मेरे मालिक के हाथ में, दुआ कीजिए कि अल्लाह तू मेरे लिए अपनी इस बादशाहत को मानना आसान कर दे। वो मैं युतब्बिरुल अम्र, कौन है जो तुम्हारे काम करवाता है। आप भूलते हैं मुशरिकीन मक्का को अपने ऊपर ले आए, लिखिए ज़रा मेरा मुदब्बिरुल अम्र कौन है, कौन है जो मेरा काम करता है। आपको तो अरबी ज़बान में प्रिंसिपल को मुदीर कहते हैं, वो भी ये लफ्ज़ है, मुदीर आला, मुदीर फ़लाँ, मुदीर सानिया, ये वो, यानी जैसे इंचार्जेस और इस तरह के नाम होते हैं। क्या मुझे इस दुनिया में रहते हुए अपने कुछ काम पढ़ते हैं? हर दिन पढ़ते हैं, कोई एक दिन तो हमारा बग़ैर कामों के गुज़रता नहीं है। खाने पीने से लेके घर की मईशत माश तक, आज से इस आयत के ऊपर अपने लिए बात बांध लें, मेरे सारे काम करने वाला मेरा रब है। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह का बन जाता है ना, अल्लाह उसका बन जाता है। तो अपने कामों को अपने हाथ में ना रखिए। आप देखिए कि आपका बच्चा और आप में इसको समझ लें। आप अपने बच्चे को कहती है मैं आपका मुंह धोऊंगी, वो कहता मैं खुद धोऊंगा। आप कहती हैं आओ मैं तुम्हें नहला दूँ, कहता मैं खुद नहाऊंगा। आप कहती हैं मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगी, वो कहता खुद पहनूंगा। फ़र्क क्या भला? जब आप धोएंगी तो आप उसके मुंह को अंदर बाहर अच्छी तरह साफ करेंगी, बल्कि आंखों में साबुन भी नहीं पड़ेगा। और जो ही वो धोएगा ना, सिर्फ इतना सा मुंह धो के आएगा, इधर इधर सूखा होगा, धो लिया है, साबुन से जाके खेलने लग जाएगा। आप शावर की दिलवाएंगी तो आप उसको नहलाएंगी, वो इर्द गिर्द सारा पानी फेंकेगा, है ना, फ़र्क है ना। आप कपड़े पहनाती हैं तो बच्चे कैसे पहनते हैं, और जब खुद पहन के आते हैं बाद दफ़ा निकर की जगह बनियान पहनी होती, बनियान की जगह निकर पहनी होगी, फ़र्क होता है ना। तो बस ये समझे, वो छोटा मासूम हाथों वाला बच्चा क्या करेगा अपने काम। तो फिर आप तो माँ हैं, आप तो सिर्फ उससे कोई 15, 20, 25 साल बड़ी हैं। तो जब रब आपके काम करेगा तो वो कैसे होंगे? मैं युदब्बिरुल अम्र, तो दिल की गहराई से कहें कि अल्लाह मेरा दिल बदल दे। ये जो मैं हर वक्त इस शोखी में फिरती हूँ ना कि मुझे बड़े काम है, आज से ये जुमला ना बोलें, मुझे बड़े काम है, मैं बहुत मसरूफ हूँ, आई एम सो बिजी, काट दी। देखिए ये खुफिया शिर्क है। हदीस में आता है कि शिर्क कितना बारीक है कि अंधेरी रात में काले पहाड़ पे चींटी चलती भी जैसे नहीं दिखती ना, इस तरह शिर्क नहीं दिखता। तो हम ना चाहते हुए भी शिर्क बोलते हैं, मैंने ये काम कर लिया, कहते हैं आप मैंने ये काम कर लिया। गलत जुमला है मेरा और आपका, जी गलत है, बहुत गलत है। आइंदा ना बोलिएगा कि मैंने कड़ी बना ली है, क्या कहेंगे आप? मेरा काम हो करवा दिया गया। देखिए कैसे खुफिया तरीक़ों से शिर्क आता है जुमलों में। एक मैंने पिछले सालों में कई मिसाल दी थी, हम कहते हैं रात आ गई है, सुबह हो गई है। रात खुद होती है, सुबह खुद होती है? नहीं, रात होती है, रात आई नहीं, रात को बुलाया गया। युदब्बिरुल अम्र, इस पे इंशाल्लाह दुआ करें, इस दौरे कुरान में हम बातें करें बहुत सारी। क्या है हम और अल्लाह क्या है? अल्लाह के हुक्म से, यानी इल्ला इंशाअल्लाह, तो तदबीर अल्लाह की। अपने सारे मामले अल्लाह को दे के तो देखें। हमारा हाल यह कि अल्लाह को भी देते हैं, ऑफकोर्स हम दिए हुए हैं तभी तो हम जी रहे हैं, लेकिन साथ कोना खुद भी पकड़ा हुआ है। जैसे आप किसी को काम करने को कहते हैं फिर से खुद भी शुरू हो जाते हैं। बाज़ माओं अपने बच्चियों के साथ ये बड़ी ज्यादती करती हैं, ट्रस्ट नहीं करती उन पर, नहीं तुमसे नहीं होगा, अच्छा मैं ये कर देती हूँ, अच्छा तुम ये कर दो वो कर दो, तो वो कहती है इन्होंने तो मुझे करना ही नहीं देना, अभी खुद कर लें। अम्मी एक तो आप इंटरफेयर बहुत करती हैं, तो आप भी खुद कर लें, ऐसा होता है ना। पूरे का पूरा अल्लाह के हाथों में दे के अपने आप को देखे। इमाम गजाली की बात याद आ गई, कहते हैं कि बंदगी क्या है कि बंदा अपने आप को अल्लाह के हाथों में ऐसे दे दे जैसे मुर्दा खुद को नहलाने वाले के हाथों में दे देता है। युदब्बिरुल अम्र, खुद को कहा करें कि मैं रुई की वो कहते हैं ना गठरी हूँ, अल्लाह इधर मोड़ेगा इधर मुड़ जाऊँगी। अभी बैठे हैं, बैठ सकते हैं, अभी उठेंगे ना एकदम कमर में अल्लाह ना करे वो जैसे कटका सा आएगा, हम वहीं बैठे के बैठे रह जाएंगे। यह हाथ कितनी दफ़ा हिल रहा है, अल्लाह ना चाहेगा तो हाथ एकदम कट जाएगा। कभी आपने बचपन में, अब तो मुझे नहीं याद, कभी होता पुतली तमाशा देखा हुआ टीवी पे? आगे एक पुतली शो आता था, पुतली तमाशा। हम बच्चे होते थे तो वो ज़ाहर में ऐसे लगता था कि वो लकड़ी की ऐसे स्टिक्स बनी हुई वो खुद चल रही हैं, लेकिन जब वो बाद में अब शऊर है और समझ आता है कि वो पुतली तमाशा जो हो रहा था तो ऊपर कोई बंदा बैठा होता था और ये जो भी वो हाथ हैं उनके उनके साथ डोरियां धागे पतले पतले धागे बंधे होते थे, तो वो ऊपर से इतने एक्सपर्ट तरीके से धागा हिलाता था कि ऐसे लगता है पुतली है। बस ये हैं हम सब पुतलियाँ, और हमारे हाथों के धागे, हमारी आँखों के, हमारे कानों के धागे अल्लाह के हाथों में बंधे हुए। बस आप अल्लाह ताला से ये दुआ कर लें कि अल्लाह ताला तू मुझे समझ दे दे। फस यकूलून अल्लाह, ऐसी तौहीद को सब मानते हैं लेकिन अफला तत्तकून, फिर क्यों इन नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं करते? फिर तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ अल्लाह को नाराज़ क्यों करते हैं? चलो कोई बात नहीं, आयत 32, फ़ज़ालिकुम अल्लाह रब्बुकुमुल हक, तो वही है अल्लाह तुम्हारा रब वर हक, हकीकी रब वही है। फ़मा ज़बाद الحق إلا الدلال, तो हक के बाद क्या रह जाता है सिवाय गुमराही के। फ़अन्ना तुसरफून, तो कहाँ से तुम फेरे जा रहे हो। ये है शऊर पे दूसरा झटका। ये आयत देखिएगा, पहली आयत 31 कहाँ ख़त्म हो रही है, वकुल अफला तत्तकुन, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते। ये दूसरी आयत कहाँ पे रुक रही है, फान ना दूसरा फोन। अगली आयत के ऊपर इन तीनों का रब बताऊंगी। यहाँ हम सबको बता दिया कि देखो ये है रब। यहाँ आप लफ्ज़ अलहक को नोट करना शुरू कर दें। मैंने आज के सबक के थीम में आपको हक का लफ्ज़ लिखाया, अलहक इस आयत में दो बार आया है, आगे भी आएगा। समझ लीजिए कि हक क्या है। पहले तो अल्लाह सुब्हान तआला पूछता है ना, फमाजा, बस क्या है। फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, तो सच है ना कि ये सब काम तुम्हारा रब भी करता है, वो अल हक है। अल्लाह सुब्हान तआला के अगर आप 99 नेम्स पढ़ें ना, तो उसमें एक नाम अल हक भी है। कभी उसकी तफसीर सुन के देखें तो आपको फिर हक से जो मोहब्बत होगी वो असल में अल हक तक आपको ले जाएगी। तो हक क्या है कि इंसान अपनी फितरत पे कायम रहे। जब करने वाला वही है सारे काम, तो उसी को पकड़ लो। सीधी सी बात है। देखिए अभी मैंने आपको मिसाल दी ना कि एक बीवी, ये तो माने कि मेरे घर में हर चीज़ मेरे शौहर की कमाई की है, लेकिन उसको मालिक नहीं समझे, तो बिगाड़ है ना, फितना है। वो घर क्यों टूट जाते हैं जहाँ लड़कियाँ सरजोर होती हैं, क्योंकि वो मर्दों की बड़ाई नहीं तस्लीम करती। अल्लाह सुबहान तआला की बड़ाई को तस्लीम करो और उसके बाद इधर से उधर ना देखो। ये है अलहक। क्या मतलब है इस बात का कि अपने आप को अल्लाह के आगे डाल दो। जिसने रब को पकड़ लिया, उसके दामन को थाम लिया, वो तबाहियों से बचेगा। और अगर एक दफ़ा अलहक का दामन छोड़ा, फमा ज़बाद अलहक की इल्लत दलाल। इसको हाईलाइट कीजिए, बहुत खूबसूरत नुक्ता है। एक दफ़ा जब हक का रास्ता बंदे के हाथों से छूटता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके नसीब में दलाल है, भटकना। अच्छा, अलहक क्या है, वाहिद, सीधा रास्ता एक है। दलाल क्या है, जमा। जब आप सीधे रास्ते से हटते हैं तो आप जिधर मर्जी जाएं। मिसाल समझेंगे तो बात थोड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। आपको यहाँ आना था, यहाँ से आपको अलहक की बात मिलनी थी। आप घर से निकले, पूरे रोड साइंस को और डायरेक्शन को और नेविगेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए यहाँ पहुँच गए, तो पहुँच गए ना, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपने घर से लेके यहाँ आने तक के रास्ते में कहीं भी रॉन्ग टर्न ले लेते, ठीक है, तो आप किधर जाते, इधर ना पहुँचते। ऐसे ही है ना, करीब से भटक जाते, इधर से थोड़ी दूर, ऐसी दो तीन गलियाँ पहले, फिर भी आप यहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन चांसेस ज़्यादा थे। किसी से पूछते हैं अभी मैनर किधर, अच्छा दैबी रोड किधर है, जे वो आपको इधर पहुँचा देता। लेकिन अगर आप अपने घर से ईस्ट साइड पे आने के बजाय वेस्ट तरफ निकलते और आपको 15 मिनट जाते और कहते हैं अभी मैनर हॉल किधर है, वो कहते वो क्या, हमें तो नहीं पता। बस ये समझ लीजिए, बहुत सारे लोग, बल्कि फितरत के अतबार से हर बंदा अलहक के रास्ते पर चलना चाहता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। खाना खाते हैं तो जिस्म को ताकत मिलती है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अंदर से स्ट्रांग होती है रूह, मेरा रब मेरे साथ है। आज ज़िंदगी में जितने लोग भटके हुए हैं ना, एथीज़म, सोशलिज़म, कम्युनिज़म, डेमोक्रेसम, फलां फलां, ये फमाज अबाद अलहक की इल्लत दलाल की तस्वीर है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, तो मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। जो बंदा अपने रब का बन जाता है ना, वो अपना भी बन जाता है। जब आप एक को छोड़ेंगे तो कितनी जगह है? मिसाल है कि हम ख़वातीन, अल्लाह ताला हमारे शौहरों को सलामत रखे, हमारी शादियाँ हुई हुई हैं, हम अपने शौहर के साथ हैं, हम जम गए, जुड़ गए, खुदा न खा। अब आज के दौर में, यानी जब एक मैरिड औरत है, कोई दूसरा उसके बारे में सोच भी सकता नहीं, सोचेगा ना, ख्याल भी आएगा तो वो कहेगा नहीं आउज़ुबिल्लाह मैं क्या सोच रहा हूँ। लेकिन खुदा न खास्ता किसी के शौहर की डेथ हो, किसी को डिवोर्स हो और वो औरत तनहा हो जाए, तो 10 रास्ते खुल जाते हैं। ये है फमाज़ अबाद अलहक की इल्लत दलाल। एक दफ़ा रब के रास्ते पे चलने के बाद ये दुआ कीजिए कि हम इसी रास्ते पे मौत है। जैसे कहते हैं ना, बेटा इस घर से तेरा जनाजा ही निकले। जब एक बंदे ने रब को पाया नहीं होता, तो ज़िंदगी का नक्शा फ़र्क होता। सारे रब होते हैं, सब कोई खुश कर रहे हैं, इन अल्लाह इश्तरा वाली बात। लेकिन जब रब को पाने के बाद छुटता है, तो आप इसको वही मिसाल जो भी दी है कि शादीशुदा औरत को कभी फिर बाद में तनहा रहना पड़े, कितनी तकलीफ़ की बातें। अक्सर हमारे कल्चर में और सिस्टर्स यही दुआ करती हैं कि अल्लाह हमें हमारे शौहर के हाथों में दफनाना, ये कहती हैं ना। नबी सल्लम भी हज़रत आयशा को कहा करते थे, आयशा अगर तू पहले फौत हो गई तो ये होगा, और वो कहती अगर आप पहले फौत हो गए तो ये होगा। यानी एक फितरी सी बात है, अल्लाह ने ये जोड़ी ऐसे बनाए कि इंसान इतना ज़्यादा यूज हो जाता है कि वो दूसरी तरफ सोचता नहीं। तो क्या बाद का दो बोलों का रिश्ता सबसे बेनियाज कर दे आपको, जो आपने 15, 16, 20 साल की उम्र में बोले। तो जो बोल बचपन से ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या उसने रब से नहीं जोड़ा मुझे? ये आज जो सजा मिल रही है आज इंसानियत को, ये रब के रास्ते से हट के नफ्स के रास्ते पे, मुआशरे के रास्ते पे, कल्चर के रास्ते पे और दुनिया के रास्ते पे चलने की है। अल्लाह सुभान व तआला ने हमें लकड़ी के बुतों से भी बचाया और इंसानी बुतों से भी बचाया। वो लोग जहाँ आयतें नाजिल होती थी उनके तो बुत पत्थर के थे, लकड़ियों के थे। आज हम अगर देखें तो हमारे तो दिलों में बुत पड़े हुए हैं। खुद से पूछिए कौन सा मेरा बुत है जो मुझे अल्लाह की बड़ाई से रोके हुए, जो मुझे रब का ही नहीं बनने देता। ताबूत कहीं नींद, मेरी नींद मेरा ताबूत है, फजर पे मुझे नहीं उठने देती, मैं क्या करूँ, मुझे नींद अच्छी लगती, ताबूत बन गया। नफ्स, ख्वाहिश, फेम, शोहरत, हर बंदे का ताबूत अलग है। आपके चार बच्चे हैं ना, आप देखेंगे उन चारों के बिगड़ने के रास्ते फ़र्क होंगे। कोई एक एंगल में भड़क जाता है, कोई किसी में, कोई दूसरे में। तो अल्लाह सुबहान तला यही समझा रहे हैं कि इनसे पूछो फलना दूसरा कौन, कहाँ जाते हो, इकरार करते हो, ऊपर से 5 सवालों के जवाब दे चुके हो कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो फिर जब तुम्हारी फितरत के अंदर हक की पहचान है, इसकी गवाहें तुम्हारी जुबानें दे रही हैं, तुम अल्लाह को अपना खालिक मानते हो, सब इकरार करते हो, तो फिर क्यों गुमराही में उनके मुँह पड़ जाते हो, तुम्हारी अकलें कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, आयत 33 कज़ालिका हक्कत कलिमत रब्बिका, इसी तरह तेरे रब की बात सच साबित हुई। किस पे? अल्लज़ीन फसकू, उन लोगों पर जो नाफरमान है, जो अल्लाह को नाराज करते हैं, जो अल्लाह के फरमान को मानने की बजाय उसकी नाफरमानी करते हैं, क्या उनके ऊपर अल्लाह की सजा है? अन्नहुम ला यूमिनून, कि वो अब ईमान नहीं लाएंगे। अब आप इन तीनों आयतों का एंड देखिए, आयत 31 के आखिर में क्या था, अफला तत्तकून, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? आयत 32 के बाद क्या था, सब बोले फाना दूसरा फोन, किधर मुंह उठा के फिर रहे हो, और अन्नहुम ला यूमिनून, बात कहाँ पे ख़त्म हुई कि वो ईमान नहीं लाएंगे। पता क्या चला कि जो अल्लाह से नहीं डरते वही गुमराह होते हैं। अल्लाह का डर बहुत बड़ी ताकत है। ये वो लोग हैं जिनको भटकने का शौक होता है, तजर्बे करते हैं, चलो थोड़ा सा भटक कर देखें कितना इंजॉय करते हैं, क्या मज़ा आता है जीने में, ज़रा देखें इस खुशी के मौके पे भटक के ज़रा होता क्या, ज़रा देखते हैं इस नेमत के मौके पे होता क्या। ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह का खौफ छोड़ देते हैं, फिर आखिर देखिए कि इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते ला यूमिनून, ईमान ही चला जाता है। हदीस में आता है कि जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है, फिर दूसरा करता है तो दूसरा, तौबा करते जाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से बदल जाएंगे, धब्बे मिट जाएंगे, लेकिन वो तौबा नहीं जो मुंह की तौबा नमाजों में पढ़ते हैं, वो नहीं, शऊर वाली तौबा जो हमने पढ़ी है, काबिन मालिक वाली तौबा, फिर तो साफ कर देगा अल्लाह, वरना एक वक्त आएगा सारा दिल काला हो जाएगा। ये अन्नहुम ला यूमिनून, गुनाह शुरू में बुरा लगता है फिर बुरा नहीं लगता। इमाम मुजाहिद का नाम सुना होगा आपने, इब्ने अब्बास के शागिर्द थे, तो वो एक मिसाल देते हैं, आप मेरे हाथ की तरफ देखें, कहते हैं कि बंदे का दिल इस तरह खुला होता है, फिर वो एक गुनाह करता है ना तो ये छिंगली उंगली बंद हो जाती है, फिर दूसरा गुनाह करता है, फिर दूसरी उंगली, फिर तीसरी, और हर गुनाह पर एक वक्त आता है पूरा दिल बंद हो जाता है। ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, तो अन्नम ला यूमिनून, क्या पता चला कि छोटे से छोटा गुनाह करते हुए भी सोचिए कि मुझे अल्लाह से डर लग रहा है इस वक्त। हम अल्लाह से डर की बातें कब पूछते हैं, जब हम काबा में हरम के आगे खड़े होते हैं और कहते हैं अल्लाह तुझसे बड़ा डर लगता है मुझे, उस वक्त तो लगना ही है, उस वक्त पूछिए जब गुनाह होता है। आप ख़ुद सोचिए, देखिए आप इस मुल्क में रहते हैं, कभी आपने रात के अंधेरों में भी सीट बेल्ट छोड़ी, ओवर स्पीडिंग की, पता भी हो कि पुलिस पीछे है तो कभी आप ये करें? अभी बल्कि मुझे आप लोगों के लिए किसी ने मैसेज लिख के दिया कि डबल येलो लाइन पे गाड़ियाँ ना खड़ी करें, अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि किसी ने देखी होगी नीचे गाड़ी किसी की, तो उन्होंने कहा कि मतलब अपनी गाड़ियों को डबल येलो लाइन पे खड़ा ना करें क्योंकि कैमरा लगा हुआ है और हो सकता है कि आपको टिकट मिल जाए ना। अब ये हम सब के लिए एक आम बात है, यहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, यहाँ नहीं करनी, यहाँ क्रॉस करना है या नहीं करना, तो ये डर हमें किस चीज़ पे रोकता है कि फिर हम ये नहीं करते। तो जब अल्लाह का डर होता है तो क्या हम अपनी खुशियों में बहक सकते हैं? ऐसी किसी जगह कोई ऐसी बात थी तो बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन हो जाती हैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें। तो मेरे हस्बैंड भी थे, तो मैंने बाद में, मेरी हमेशा आदत है कि दूसरे को ही साइड देती हूँ, मैंने कहा नहीं असल में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन असल में ऐसे वक्तों में बाज़ दफ़ा अपने बस में नहीं बात होती। तो कहने लगे कि फिर उस वक्त ये बात हमारी आपस में हुई कि अल्लाह का डर तो बंदे को कभी किसी दूसरे के हाथों में मजबूर नहीं होने देता, क्योंकि हम गवर्नमेंट के डर से तो बहुत कुछ करते हैं, तो अल्लाह के डर से क्यों नहीं करते? तो अल्लाह का डर गुनाहों से रोकता है। करें क्या? दुआ करें, ए अल्लाह मेरा दिल गुनाहों से बदल दे, अल्लाह मेरा गुनाहों में मज़ा ख़त्म हो जाए, अल्लाह मुझे नाफरमानी में मज़ा ही ना आए, अल्लाह मुझे हराम अच्छा ही ना लगे, अल्लाह मुझे हलाल अच्छा लगे, अल्लाह मुझे दुनिया में रहते हुए जन्नत की फ़िक्र लग जाए, अल्लाह मुझे जन्नत के अरमान मिले। देखिए ये मांगनी पड़ती हैं, अल्लाह के नबी की दुआएं जो मस्नून दुआओं की सूरत में आपको मिलती हैं, तो उसमें दुआएं कि अल्लाह मुझे अपना खौफ सबसे बड़ा खौफ दे दें, अख़वा फोशिया, सारी चीज़ों के खौफ, पुलिस के, चोर के, कातिल के, फलां के, उन सब के खौफ से बड़ा मुझे अपना खौफ दे दे, और सब की चाहतों, सब की मोहब्बतों से ज़्यादा मुझे अपनी मोहब्बत दे दे। तो दुआओं के आईने में आप ताल्लुक़ बिल्लाह को मजबूत कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपकी दुआएं अल्लाह सुनता है। वही लोग जो दुनिया के छोटे छोटे कवानीन को मानते हैं, लेकिन जब अल्लाह के और दीन की बात करते हैं, इट्स बिटवीन मी एंड हिम, लोग साफ कहते हैं भाई ये मेरा और अल्लाह का मामला, तुम्हें नहीं कुछ बोलने की ज़रूरत, इट्स माई प्लेयर, इट्स माई सेंस दिस एंड दैट। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि फिर याद रखो कि अन्नहुम ला युमिनून।
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ